द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नूतन और आज मैं आपको सुना रही हूँ मोहना बासु की रिपोर्ट। प्लास्टिक बैन की डेडलाइन को पास आता देख परेशान है उद्योग, सरकारी आदेश में रिसाइकल वस्तुएं भी शामिल। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 1 जुलाई से शुरू होने वाले प्लास्टिक बैन के नज़दीक आती जा रही हैं, भारतीय प्लास्टिक उद्योग खुद को बेबस खड़ा पा रहा है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि महामारी के दौरान निर्माताओं ने कोविड की रोकथाम के लिए ज़रूरी माने जाने वाली PPE किट और अन्य सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया था, लेकिन आज उन्हें रातों रात अपराधी बना दिया गया। सरकार ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है। शुक्रवार से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है और कूड़े के बड़े ढेर के लिए जिम्मेदार है। सरकार ने फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों समेत कई अलग अलग हितधारकों के अनुरोध के बावजूद समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। प्रतिबंधित की जाने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे और स्ट्रीडर शामिल हैं। ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे, कैंडी और आइसक्रीम के लिए प्लास्टिक की छड़ें और सजावट के लिए थर्माकोल, रैपिंग या पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट और 100 माइक्रोन से कम के PVC बैनर की भी अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में लगभग 683 इकाइयाँ हैं जो हर साल लगभग 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करती हैं। उद्योग के प्रतिनिधि सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने की समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के कदम पर भी सवाल उठाया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। TAIA के मुताबिक उद्योग का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपये है और इसमें सीधे तौर पर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह प्रतिबंध रातों रात 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को बेकार कर देगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से रिसाइकलिंग उद्योग पर भी असर पड़ेगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से 4.5 लाख लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा है। पॉलीप्रोपाइलीन से बनी ट्रे, ग्लास और कटलरी जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं को रैक पिकर्स कूड़े से उठाकर और रिसाइकलर्स को बेचते हैं, जो उनका इस्तेमाल प्लास्टिक सीट बनाने में करते हैं, फिर उनसे टूथब्रश और अन्य कठोर प्लास्टिक उत्पादों के ब्रिसल्स बनाए जाते हैं। द प्रिंट ने ईमेल के जरिए पर्यावरण मंत्रालय से टिप्पणी लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक कोई प्रक्रिया नहीं मिली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विशेषज्ञों ने प्रतिबंध को लिमिटेड बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि प्लास्टिक के खतरे को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस तथ्य पर उद्योग की चिंताओं का समर्थन किया कि प्रतिबंध मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग को कवर नहीं करता है, जिसका इस्तेमाल चिप्स से लेकर शैम्पू और गुटखा पाउच तक लगभग सभी उपभोक्ता सामानों से धड़ल्ले से किया जाता है। TAIA के मुताबिक मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक या मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, लेकिन सरकार ने MLP को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए अपने निर्माताओं को 2 साल का समय दिया है। TAIA के संयुक्त सचिव अंकुर नागपाल ने कहा, ये उत्पाद वजन में हल्के होते हैं और इन्हें रिसाइकल करना ज़्यादा मुश्किल है। ये लैंडफिल के ढेर को बढ़ाने और महासागरों को प्रदूषित करने का काम करते हैं। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक का निपटारा करने के लिए इनका इस्तेमाल सड़क निर्माण और ईंधन उत्पादन जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। CPCB विभिन्न एजेंसियों को सड़क निर्माण के लिए बेकार प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस उद्योग से जुड़े खिलाड़ियों का कहना है कि कम रिटर्न के कारण कचरा बीनने वाले ऐसे वेस्ट प्लास्टिक उत्पादों को इकट्ठा करने से बचते हैं। इस वजह से नगरपालिका एजेंसियों पर MLP अलगाव की जिम्मेदारी डाल देता है। TAIA पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार ने कहा, हमने पाया कि बिहार में सरकार सड़कों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की खरीद तक नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और अलग करने जैसे जरूरी काम को अंजाम नहीं दे पा रहा था। लोकसभा में एक सरकारी जवाब के मुताबिक भारत ने साल 2019-20 में 34.69 लाख टन प्रति वर्ष प्लास्टिक कचरे का उत्पादन किया, जिसमें से लगभग 15.8 लाख TPA प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल किया गया और 1.67 लाख TPA को सीमेंट भट्टों में को प्रोसेस्ड किया गया। 29 जून को जारी एक बयान में सीएससी प्रमुख सुनीता नारायण ने भारत में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 3 आयामी रणनीति की वकालत की थी। उन्होंने कहा, सबसे पहले उत्पादित और इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्लास्टिक को निपटान के लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए। दूसरा, वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल करना या फिर जला दिया जाना चाहिए ताकि यह लैंडफिल तक ना पहुंचे या फिर हमारे जलाशयों में जाकर इकट्ठा ना हो। वह आगे कहती हैं, तीसरा, इसका रियूज या निपटान कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह पर्यावरण के अनुकूल हो और इससे अधिक प्रदूषण या स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा ना हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिन प्लास्टिक वस्तुओं को इकट्ठा करना या उनका रिसाइकिल करना मुश्किल है, उन्हें उपयोग से बाहर कर देना जाना चाहिए। यह वह जगह है जहां मौजूदा प्रतिबंध हालांकि सीमित है लेकिन फिट बैठते हैं। TAIA के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्लास्टिक काफी आम है और इसका अब तक कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं है। नागपाल ने कहा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक काफी महंगी है। सड़क किनारे सामान बेचने वाले के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना आसान नहीं है, इससे उसकी लागत काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा उस प्लास्टिक में गर्म खाना और पेय पदार्थ नहीं परोसा जा सकता है। उन्होंने कहा, कागज से बना सामान पर्यावरण पर और अधिक बोझ डालते हैं और वैसे भी इन्हें जूस या पेय उत्पादों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज्यादातर पेपर कप की मजबूती के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, इस वजह ये इसका कचरा नॉन रिसाइकलेबल हो जाता है और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ा देता है। एसोसिएशन ने दावा किया कि भले ही प्रधानमंत्री ने साल 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत की मंशा को जाहिर किया हो, लेकिन इसके कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। कुमार ने कहा, सरकार के साथ शुरुआती विचार विमर्श के दौरान हमें बताया गया था कि रिसाइकिल करने योग्य उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अगर सरकार उन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही थी तो उन्होंने इस तरह के विस्तार को मंजूरी क्यों दी? जब हम गेल या ONGC से कच्चे माल के लिए भारी ऑर्डर दे रहे थे तो हमें क्यों नहीं रोका गया? नागपाल ने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें बताए कि क्या उत्पादन करना चाहिए कि जिस पर वह प्रतिबंध नहीं लगाएगी। TAIA के राष्ट्रीय सचिव भावेश भुजानी ने कहा, हमारे रोजगार के साधनों को बंद करने के बजाय हम सरकार से उन्हें ऐसे खास बिंदुओं की जानकारी देने के लिए कह रहे हैं जिससे प्लास्टिक की वेस्ट रिसाइकलिंग आसान हो जाए। हम सरकार के साथ हैं और सहयोग करने के इच्छुक हैं। एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि सरकार 210 मिली से कम क्षमता वाले और 5 ग्राम से कम वजन वाले प्लास्टिक कप के उत्पादन को प्रतिबंधित करे। इसमें कहा गया है कि प्लेट और ट्रे की मोटाई 150 माइक्रोन से कम या वजन 5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। भुजानी ने कहा कि अगर उत्पाद भारी हैं तो कचरा बीनने वालों के लिए उन्हें इकट्ठा करने और उन्हें रिसाइकल करने वालों को बेचने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा कि उद्योग फोमड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। द प्रिंट पॉड के इस अंक में आज इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ।